ओम शांति। अभी अभी जब बहन जी परिचय दे रहे थे उससे पहले आप कह रहे थे अभी आप चाय पी कर आए हैं फ्रेश होके और मुस्कुरा कर भी आए हैं। मुस्कुरा कर यानी कहाँ से आए हैं? फोटो खिंचवा के। तो उस समय मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं अभी डेढ़ दो महीना पहले यूएस में था, मतलब कुछ 8 कंट्रीज के टूर पर था, उसमें एक यूएस भी था। तो वहाँ मुझे एक किताब भेंट की गई थी, तो ऐसी मैं उसे पढ़ रहा था। बहुत अच्छा, अच्छी किताब थी, जीवन के अलग अलग इंस्टेंसेस बहुत लोगों के। तो एक उसमें छोटी सी बात थी, वो मुझे आज याद आ गई, मुझे बहुत अच्छी भी लगी कि एक बच्ची को माँ ने स्कूल में भेजा। छोटी थी बच्ची, 5-6 साल की रही होगी, तो स्कूल में पढ़ रही थी। इन द मेन टाइम कुछ बरसात का सा मौसम हो गया, बादल कड़कने लगे, बिजली कड़कने लगी, तो माँ को चिंता हुई। तो माँ ने कार निकाली और बच्ची को लेने जा रही थी, तो देखा बच्ची उधर से आ रही है सामने से पैदल, और बड़ी खुशनुमा और बीच बीच में मुस्करा के आसमान की तरफ देखती थी, और फिर अपने को अप टू डेट करते, अपना फ्रॉक वगैरह अप टू डेट करते, फिर आगे चल देती थी। तो माँ दूर से ही देख रही थी, काफी देर तक ऑब्जर्व किया, फिर माँ ने पास आने पर उसे बिठा लिया। तो तुम ये क्या कर रही थी बेटी, कि ऊपर मतलब अपना फ्रॉक ठीक करके ऊपर स्माइल करके देखती थी और फिर आगे चल देती थी। तो क्या कहा होगा बच्ची ने, बड़ा अच्छी बात बच्चों की, इनोसेंट, कि मम्मी गॉड वॉज टेकिंग माई फोटोग्राफ, भगवान मेरा, क्योंकि बिजली कड़कती थी और जैसे फ्लैश होती है ना कैमरे में, सिंस गॉड वॉज टेकिंग माई फोटोग्राफ तो मुझे तो गुड लुकिंग दिखना चाहिए ना, तो आई वॉज स्माइलिंग एंड मेकिंग माई सेल्फ अपडेट, पूरा फ्रॉक व्रॉक ठीक कर रही थी। तो बस यही है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत आदिकाल से बोलते हैं ईश्वर तो जाने जाना हार है, देखता है सबको और सबकी गतिविधियों पर नजर अगर है, तो उसी स्थिति में अगर हम सब रहें, सदा खुश रहें, तो वास्तव में जीवन में कभी गम ना आए, गुस्सा ना आए। और आज का जैसा टॉपिक है ओवरकमिंग एंगर, तो बहन जी जैसे बता रहे थे क्रोध, शायद ही ऐसा कोई हो जिसे क्रोध ना आता हो, मेरे लिए कह रहे थे, लेकिन मैं तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे भी आता है क्रोध। हालांकि प्रयास यही रहता है कि न रहें, फिर भी आत्मा के पुराने संस्कार होते हैं, कई बार आ जाता है। हालांकि रिलेटिवली उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी जितना योग करते हैं कम होती जाती है। तो एंगर, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी विचार करेंगे, क्योंकि शुरू करते करते कुछ लेट हो गया है। तो जैसे बहन जी अभी मेरा बायोडाटा पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे एंगर का भी एक बायोडाटा है। हाँ, क्या होगा एंगर का बायोडाटा, देखिए, हाँ, उसका नाम और देखिए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, नाम क्या है एंगर, डेट ऑफ बर्थ अननोन। शुरू से ही सुनते आ रहे हैं फलाने को गुस्सा आता था, ऋषि मुनियों के लिए भी इट इज नॉट नोन कि कब से शुरू हुआ। फादर एंड मदर कौन है, आई एंड माई, हमेशा शुरू ही इस बात से होता है आई, क्योंकि अक्सर करके हम दुनिया को, सब लोगों को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाना चाहते हैं, और जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, दूसरा हमारी बात नहीं मानता है, गुस्सा आता है। इसीलिए आई एंड माई, दिस इज माई ऑर्डर, दिस इज माई ओपिनियन, आई से यू दिस थिंग यू डू। तो इस तरीके से ये, और वैसे भी सर्वे किया गया है और पाया गया है कि ये ही दो शब्द हैं आई एंड माई जो सारे दिन भर में हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, और चूंकि सारे दिन में ये सबसे ज्यादा बोलते हैं, इसलिए क्रोध भी आना स्वाभाविक है, दे आर एक्चुअली द ओरिजिनेटर ऑफ एंगर. फिर कब आता है क्रोध, किस तारीख को और किस जगह आएगा, कोई कह सकता है? कहां क्या लिखा हुआ है यहां पर? एनी टाइम एंड एनी वेयर, कहीं भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है. ये पूरा क्रोध का बायोडेटा है. और बर्थ प्लेस क्या है? अफेक्टेडनेस. हाँ, कहीं पर भी जहां भी हमारी फीलिंग्स कुछ थोड़ी सी अफेक्ट हुई, कोई भी प्रकार का प्रभाव आया, अकॉर्डिंगली क्रोध का जन्म हो जाता है. और इसके संबंधी है टेंशन, वरीज, डिप्रेशन, ये सब साथ में. क्योंकि जैसा बहन जी अभी बता रहे थे, गुस्सा आता है, शुरुआत गुस्से से होता है और अंत किससे होता है? पश्चाताप से. बस तो इसीलिए उसमें कई बार चिंता, वरीज, डिप्रेशन में भी आदमी चला जाता है. और इस रीति से लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन क्रोध कभी किसी ने देखा है? बड़ी शांति से और प्रेम से गुस्सा कर रहा हो कोई? नहीं. बस गुस्सा होगा तो ऑटोमेटिकली चिल्लाना, आवाज तेज, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, आदि आदि. टेस्ट भी बिटर हो जाता है, लाइक दैट. और ये कई प्रकार की भावनात्मक, इमोशनल फीलिंग और दीज ऑल थिंग्स, ये सबका अनुभव है. इसलिए इन चीजों में नहीं, क्योंकि शुरू में हम लोग थोड़ा ऐसा फास्ट जाके, देन हाउ, व्हाट आर दीज, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, वो उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं. और ये जब क्रोध को है, कहते तो हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वास्तव में आज के संदर्भ में क्या कहा जाएगा? विच इज ओमनीप्रेजेंट, एंगर. देखा ना, कहीं पर किसी भी समय कहीं पर ये हो सकता है. और जब ये एंगर आता है, और इसका पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, किसी में भी, और एंगर का कोई भेदभाव नहीं है कि इस पर्टिकुलर कास्ट, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आएगा, नहीं. हर एक को, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग, देशों का भी या धर्म की भी मर्यादा नहीं है. किसी भी धर्म वाले, किसी भी देश वाले, किसी भी कल्चर वाले, कोई भी प्रोफेशन वाले आदि को आ सकता है, आदि आदि. और शायद ही कोई दिन ऐसा पास होता हो जब एंगर, क्योंकि आज समाज के अंदर जो भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उसका अधिकतर कारण एंगर ही है. उसकी वजह से वायलेंस होती है, मर्डर होते हैं, और कई प्रकार की अधिकतर प्रॉब्लम्स होती हैं. इसलिए डेली न्यूज आदि में भी ये आता है. तो आई, जैसे आपने बताया ना, आई, आप आध्यात्मिक जगह बैठे हुए हैं, तो कैसे और इस एंगर को कंट्रोल किया जाए? आई, ईगो, ईगो भी इसका एक वो है. तो हम सबका अनुभव है, आई जितना होता है ईगो, और जब भी ईगो हर्ट होता है तो आता है. तो कैसे हम अपने ईगो को एक लाइन में, बस एक अक्षर में छोटा कर दें. आई माने बड़ा, कैपिटल आई होता है ना, तो ये आई बहुत बड़ा. आई, इस आई को छोटा, जितना कम से कम छोटा आई कर देंगे, एंगर भी कम हो जाएगा. छोटा आई इसे कैसे किया जा सकता है? एकदम कम कर दें, मिनिमम, स्मॉल आई. बड़ा इजी है, एक बच्चा भी बता देगा, नर्सरी वाला. ठीक बोला. ये जो है ना, ये कैपिटल आई, इस आई के ऊपर अगर एक बिंदी लगा दें, छोटा आई हो जाता है. यहां पर जितना भी ज्ञान बताया जाता है, उसका जस्ट यही है. क्या है ये? देखिए, शरीर भी हमारा आई की तरह है, पूरा स्ट्रेट, कैपिटल. लेकिन यहां आके आपको पहला ही लेसन कौन सा कराया गया आज सुबह? आप कौन है? आत्मा. यहां बिंदी आत्मा. बस जब ये फीलिंग एक बार डेवलप, अभी तो सुना है आपने, लेकिन धीरे 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 जब उसको अनुभव करते जाएंगे आप, कि मैं आत्मा हूं, बिंदी स्वरूप हूं, इस सृष्टि में खेल खेल रही हूं, पार्ट बजा रही हूं. किसी को जैसे नाटक होती है, फिल्म होती है, पार्ट मिलता है, ऐसे ही भाई किसी को पति का पार्ट है, किसी को स्त्री पत्नी का पार्ट है, इसीलिए पुरुष रूपी चोला किसी ने पहना है, किसी ने स्त्री रूपी चोला वस्त्र पहना है। तो ये जब फीलिंग डेवलप हो जाती है तो जैसे नाटक में, फिल्म में, शूटिंग में क्या होता है, हीरो हीरोइन होते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। एक्चुअल लाइफ में कोई भी हो, लेकिन फिल्म में कहीं कोई हस्बैंड बनता है, कोई वाइफ, कोई बच्चा, तो उस वक्त अगर उसे विलेन का भी पार्ट करना है किसी को, तो विलेन का पार्ट करेगा, वायलेंट होगा सब प्रकार से। भले एक्चुअल केस में कई विलेन होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं, हमने प्राण, पुराने जमाने में प्राण होता था एक तो विलेन, लेकिन उसकी लाइफ हिस्ट्री में हमेशा बताया जाता था बहुत ही जेंटल टाइप का आदमी था, वेरी वेरी जेंटल, लेकिन फिल्म में उसकी शूटिंग वैसे। तो ऐसे ही जब हम पार्ट प्ले कर रहे हैं तो उस पार्ट में हमें जो पार्ट प्ले करना है उसकी अगर स्मृति रहती है तो भाई मैं आत्मा हूं, इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूं, और फिर ये शरीर के रूपी वस्त्र बदल के मैं आत्मा अपने घर चली जाऊंगी। एक मेथोडोलॉजी ये है जिसके द्वारा हम सेल्फ कंट्रोल और ये सब चीज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है, एंगर के लिए और क्या कहा जाए, इंटेंसिटी ऑफ एंगर, क्रोध एकदम नहीं आता। आपने देखा होगा अंदर ही अंदर पहले बिल्ड अप होता है किसी के लिए, थोड़ी बात आई फीलिंग, किसी और ने और भर दिया आपको, और फीलिंग डेवलप होती गई, तो इस कारण से वो धीरे 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 बिल्डअप होता है और बर्स्ट आउट तो किसी सिचुएशंस में होता है। तो इसने पहले थोड़ा माइल्ड इरिटेशन किसी व्यक्ति के प्रति, थोड़ा सा बायस्ड फीलिंग हो जाएगी कोई परिस्थितियों के प्रति, और हम कहेंगे नहीं, बातचीत में भी ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के प्रति हमारी थोड़ी भावनाएं जो है ना वो खराब होने लगती है, और धीरे 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 बिल्डअप होते होते जब कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, वही माइल्ड इरिटेशन जो है वही फिर आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है तो व्यक्ति एकदम बर्स्ट आउट हो जाता है, उसकी वाणी में और कर्म में कई बातें ऐसी आ जाती हैं। इसलिए गीता में भी कहा है कई, काम क्रोध लोभ हे अर्जुन ये नरक के द्वार है। नरक के द्वार माने काम, माने कामनाएं, इच्छाएं। तो क्रोध कामनाएं, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को, क्यों, उनको अपने कंट्रोल में रखना है। हा? क्रोध का उल्टा क्या होगा, कोई नहीं चाहता क्रोध हो, तो क्या चाहते हैं हम सब लोग, किस स्थिति में रहे, शांति भी, और जहां शांति होगी वहां खुशी भी होगी, आनंद होगा। तो हैप्पीनेस का कुछ फार्मूला है, आप समझते हैं, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, हाँ इसका फार्मूला कोई है, क्योंकि हैप्पीनेस अगर रहेगी, खुशी रहेगी, तो क्रोध अपने आप नहीं आएगा। संतुष्ट, हाँ इसका कोई फार्मूला, जनरल बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हैप्पीनेस खुशी अर्थात इसमें अचीवमेंट्स यानी प्राप्ति डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। अचीवमेंट्स यानी प्राप्तियां, जीवन में जब कोई प्राप्ति होती है तो खुशी होती है, भाई हमने ये एक्सपेक्ट किया भाई मेरे बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, हो गया, खुशी होगी, मेरा मकान बढ़िया बन जाए, बन गया, खुशी होगी। तो ये तो प्राप्ति है, लेकिन नीचे एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं। हमारी जब ये अपेक्षाएं बहुत, जितनी ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं उतना हैप्पीनेस क्या होगा, अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी तो खुशियां कम होंगी। तो अचीवमेंट्स होती है सबको खुशी की बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, जिंदगी में हम चाहते हैं क्रोध कम से कम आए, खुशी हमारी ज्यादा रहे, हम आनंद में रहें। और डॉक्टर भी आजकल लोग बोलते हैं कि अधिकतर 75-80% बीमारियां जो हैं किस वजह से होती हैं, हमारी थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग, साइकोसोमेटिक फैक्टर्स ये हैं, इनके कारण ही ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इंसोमनिया, ये जितनी ज्यादातर बीमारियां हैं ये हमारे थिंकिंग के कारण, जेलेसी, हेटरेट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदला लेने की भावना, क्रोध, अहंकार, ये जितनी विचारधाराएं मन में होती हैं, सबसे पहला नुकसान तो हमारे शरीर को होता है। ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी, ये सब। और इसका मुख्य कारण क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन। हम कहें ना कहें लेकिन हमारी किसी के प्रति ये अपेक्षा होती है वो ऐसा करे, ऐसा बिहेव करे, ये काम उसके द्वारा हो। और एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल नहीं होती हैं तो क्या होता है, हैप्पीनेस लेवल कम हो जाता है। तो यहां से जाते हुए आप एक तो ये करके जाइएगा, लेके लक्ष्य कि हमारी अपेक्षाएं कम से कम, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में, बाप बेटे के बीच में भी। क्यों? एक्चुअली बच्चा है हमारा, हमारा ये ड्यूटी है उसको इनपुट देना, पढ़ाना लिखाना, पैर पर खड़ा करना, जिससे जीवन में वो अपने लायक बन जाए, ये ठीक है हमारी ड्यूटी। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब बच्चा मेरी संभाल करेगा, और आज के जमाने में एक्सपेक्टेशन मोस्टली पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है, फिर व्यक्ति एकदम डाउन टू अर्थ, पूरा नीचे, जैसे उसका सोचना, क्योंकि वो सोचता है अरे मैंने तो अपने पिता का इतना ख्याल किया, लेकिन जमाना चेंज हो रहा है, उसके साथ परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। इस कारण से एक तो ये शब्द है अपेक्षा, एक दूसरा शब्द है उपेक्षा। इन दो शब्दों से जीवन में जितना बचेंगे उतना क्रोध के ऊपर नियंत्रण होता जाएगा। यदि हम अपेक्षा रखते हैं लेकिन वो अपेक्षा फुलफिल नहीं होती है, क्रोध आता है। और अगर हम किसी की उपेक्षा कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई आ रहा है हमारे उससे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, या कोई ऐसी बात है, हमने उसे उपेक्षा करी, देखा नहीं, बात नहीं की, एक तरफ मुंह मोड़ के चल दिए, किसी को निग्लेक्ट किया, उपेक्षा की, इससे दूसरे को दुख होता है और वो फिर संबंधों में तनाव का कारण बन जाता है, वो अल्टीमेटली किसी न किसी परिस्थिति में क्रोध के रूप में प्रकट होता है। तो इसीलिए अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो शब्दों से बचें, और हैप्पीनेस का ये फार्मूला ये सदा याद रखें। और साथ ही साथ कभी भी जब भी मन के अंदर ना कोई भी हो प्रॉब्लम, समस्याएं दो कारण से होती हैं। हमारी दादी चीफ थी, वो अक्सर एक बात कहा करती थी कि संबंधों में कटुता, तनाव, प्रॉब्लम, समस्याएं अधिकतर दो कारण से होती हैं। एक होता है कम्युनिकेशन गैप और एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जब कभी अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी बात हो, हमारे मन में कोई बात उठ रही है, उसने किसी ने कोई बात किसी के लिए कही, अब जरूरी नहीं है कि वैसी बात हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार डेवलप ना हो, आगे न बढ़े। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी होती है तो सबसे पहली कैजुअल्टी होती है कम्युनिकेशन गैप। हमारा बातचीत करने को उससे दिल नहीं करता, बातचीत ब्रेक डाउन हो जाती है, हम सोचते हैं पहले वो बात करे फिर मैं बात करूं। तो इन दो कारणों से क्या होता है, संबंधों में कटुता आती है और वो बढ़ते बढ़ते फिर तनाव का और क्रोध का रूप ले लेती है। तो इस कारण से कभी भी किसी के प्रति कोई भी बात हो, प्रॉब्लम हो, छोटी भी हो, तुरंत ही हम उनके साथ बैठ के देखिए कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना होने दें कभी भी। कहे भाई हमें ये सुना है, मैं 5 मिनट आपके साथ बैठना चाहता हूँ, बैठना चाहती हूँ, बस आपस में मिलके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई हमने ऐसा सुना है कि आपने फलाने को ये कहा, बात क्लियर नहीं तो वो छोटी सी कोई भी बात होती है वो बढ़ती रहती है और फिर क्रोध का और बीमारियों का अनेक चीजों का रूप वो धारण करती रहती है। इसीलिए मानसिक स्थिति हमेशा हमारी समान रहे हर परिस्थिति में, उसके लिए क्या करना है ना? देखो एक छोटी सी ये बात बताते हैं आपको, टेंशन स्ट्रेस ये सब ये पहला रूप है जैसे क्रोध का आने का। एक व्यक्ति था ऑफिस में काम करता था, भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच था वन डे, 50-50 ओवर का मैच, उसने ऑफिस से छुट्टी ली, भाई आज मैच आराम से देखेंगे, और घर में छुट्टी लेके टीवी सामने खोल दिया और मुंह में सिगरेट लगा के पैर फैला के आराम से मैच देख रहा था। अब मैच देख रहा था, मैच थोड़ा शुरू हुआ तो इतनी देर में उसकी मिसेज आई, छोटा बच्चा हाथ में था गोदी में, बच्चे को लेकर के आई, मुंह में बच्चे के बोतल दूध की लगी हुई थी, तो मिसेज ने बोला कि भाई बच्चे को ये बोतल से दूध भी पिलाते रहो, मैच भी देखते रहो, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। उसने कहा ठीक है, बच्चे को हाथ में लिया, बस मैच भी देख रहा था, बच्चा शांति से दूध पीता पीता सो गया। उसने बच्चे को चारपाई पर लिटाया, बोतल निकाल के रख दी और फिर आराम से मैच देखने लगा। मैच बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज में आ गया, 45 ओवर हो गए और कोई भी टीम जीत सकती थी, एक टीम के साथ आउट हो गए थे और कुछ ओवर बाकी थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में था, तो गौर से देख रहा था, इतनी देर में बच्चा जग गया, रोने लगा। तो पहले तो बच्चे को उसने थपथपा के सुलाने की कोशिश करी, लेकिन बच्चा नहीं सोया। हाँ बस तेजी तेजी से, अब उसका ध्यान तो मैच में था लेकिन बच्चा भी रोने लगा, उसने जल्दी जल्दी बच्चे को उठाया और देखो क्या किया उसने, देखो सिगरेट बच्चे के मुंह में लगा दी, बोतल अपने मुंह में लगा दी, दूध की बोतल भी रखी हुई थी ये। तो टेंशन स्ट्रेस कहीं पर भी ध्यान हमारा कहीं और होता है, तो जैसे अभी आप हंस रहे हैं ना, ऐसे कभी हम भी लाइफ में स्ट्रेस होता है तो हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी देख के सब खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा इसे आज ऐसा सबक मिला। तो जन्म इसका क्रोध का कहीं भी टेंशन से भी वो शुरू होता है। इस कारण से इस परिस्थिति के लिए ना हम सदा बचे हैं, और टेंशन तो आएगा लाइफ में, लेकिन वो टेंशन को ना हम किस प्रकार से बैलेंस्ड रख सकते हैं जीवन में, वो भी आपको यहाँ अभी विधि बताई जाएगी। इसीलिए और एंगर के और अलग अलग हैं क्या फॉर्म्स होते हैं, एक एंगर का फॉर्म होता है इम्पेशेंस, यानी कि बस अधीर रहता, भाई जल्दी जल्दी ये काम करो ये है, वो वास्तव में क्रोध को जन्म देता है। भाई दूसरे की भी अपनी कैपेसिटी है उस तरीके से, तो एक तो धैर्य, दूसरा फ्रस्ट्रेशन, कई बार होता है हमने तो अपनी टीम से बहुत आशा रखी थी जीतने की, वो हार गई, बस उसी में बस निराशा में भी एकदम, कई बार होता है ना टीम हार जाती है उसके जो समर्थक है तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, अक्सर करके टीवी में न्यूज वगैरह आ जाती है, और इंडिग्नेशन है कि भाई हमें नीचा दिखाया गया, हमें इग्नोर किया गया, ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, और कई बार वो उससे अपना ईगो हर्ट होता है, सेल्फ राइटियसनेस, इफ समवन अराइव्स लेट, किसी को टाइम दिया है उस टाइम पर नहीं पहुंचा, क्रोध आदि। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्रोध एक्चुअली कोई चीज नहीं है, क्रोध माने हमारा रिएक्शन, वो क्रोध या शांति को जन्म दे सकता है। एक ही परिस्थिति होती है, उसमें चार आदमी हैं, चार आदमी में एक शांत रहेगा, दूसरा थोड़ा सा वो होगा, तीसरे को एकदम क्रोध आएगा और चौथा वायलेंट और हो जाएगा, अलग अलग रिएक्शन। इसलिए रिएक्शन हमारा कैसा है वो तो हमारे हाथ में है ना। इसीलिए हमें, हम अक्सर कह देते हैं क्या करें, उसने ये करा तो मुझे क्रोध आ गया, उसने झूठ बोला तो मुझे, दूसरे के उस कोई भी कार्य से हमें क्रोध नहीं आता, मेरा रिएक्शन कैसा है, जो प्योरली मेरा रिएक्शन है उसके लिए मैं खुद और ओनली आई माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। इस कारण से वो क्या चाहिए, मेंटल बैलेंस, वो परिस्थिति की बहुत आवश्यकता है। और वो मेंटल बैलेंस हम कैसे, क्या परिस्थिति होती है, हम सभी अनुभवी हैं क्रोध के समय क्या स्थिति होती है हम लोगों की, देखिएगा। हाँ, बस व्यक्ति थोड़ा सा कांपने लगेगा। हाँ, जब कभी क्रोध आता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, देखा है आपने। हाँ, व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, क्रोध, शरीर जो है ना व्यक्ति का पूरा, हाँ, एकदम वैसे ढीला ढाला होगा, लेकिन क्रोध होगा तो एकदम शिवरिंग होगा, अकड़ जाएगा शरीर जैसे, तो बॉडी ऐसी हो जाती है। लेकिन माइंड कैसा हो जाता है, माइंड उसका ना मतलब वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है माइंड, राइट डिसीजन। क्रोध में कभी भी आदमी राइट डिसीजन नहीं लेता है। तो ये जो क्रोध है ना, एंगर, एंगर में मनुष्य की स्थिति फिजिकली ऐसी हो जाती है, मेंटली ऐसी हो जाती है। ये कौन सा अक्षर है, डी। तो एंगर जो है ना वो ये रूप धारण कर लेता है, कौन सा, डेंजर, खतरनाक। क्यों, क्योंकि जब ये एंगर आता है तो ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी क्लाउडी हो जाती है, राइट डिसीजन राइट टाइम पर नहीं ले सकता आदमी, और क्रोध के आवेश में ही ना वो बहुत एंटी सोशल एक्टिविटीज कर लेता है। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनें जेलों में भी जाती हैं, कई तरफ की ईश्वरीय सेवा करती हैं, तो मुझे भी कई बार जेल में सेवा के लिए जाना हुआ, और वहां पर हम देखते थे इतने अच्छे अच्छे परिवारों के लोग भी जेलों में बंद हैं, जो प्रिंसेसली स्टेट्स से बिलोंग करते थे, उनका रहन सहन खान पान सब, और पता चलता था बस कोई हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ऐसा काम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का एकदम इतना ज्यादा नुकसान कर दिया, उसकी वजह से वो जेल में बंद है। तो देखिए, होता एक मिनट का हीट है लेकिन जीवन भर उसका पछतावा होता है उसका, क्योंकि उस समय आदमी का कंट्रोल अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर नहीं रहता है। इसीलिए एक तो व्यक्ति शिवरिंग जैसा कांपने से भी लगेगा, दूसरा व्यक्ति का कंट्रोल अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर से वो हट जाएगा, साथ ही साथ जब कभी ऐसी स्थिति हो ना तो क्या होगा, व्यक्ति आपने देखा होगा क्रोध होगा ना तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा, अपनी उसी बात को और तेजी से, बहुत तेजी से बोलेगा, और साथ ही साथ और क्या होता है, साथ में क्रोध का शुरुआत तो ऐसी होती है और अंत हमेशा पश्चाताप से होता है। तो इसलिए जब ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए उस समय, ये जब परिस्थितियां आती हैं, इन परिस्थितियों में मानसिक बैलेंस हम कैसे बनाए रखें, एक ये बहुत आवश्यक है। और मानसिक बैलेंस बनाए रखने के लिए एक तो हम ये देखें, हमारी भारतीय संस्कृति ने दो सिद्धांत दिए हैं शुरू से, हम थ्योरेटिकली जानते भी हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। कौन सी सिद्धांत दिए हैं, एक सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति का है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बस इसे हम भूल जाते हैं। परिवार में देखते हैं सास बहू को अपनी इच्छा से चलाना चाहेगी और बाप बेटे को, भाई भाई को, बिजनेस पार्टनर एक दूसरे को, और इस कारण से जियो और जीने दो का ये सिद्धांत हम जब भूल जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में यही क्रोध, आवेश और वायलेंस इन सब का जन्म देने का कारण बन जाता है। तो ये भारतीय संस्कृति के एक इस सिद्धांत को लिव एंड लेट लिव। लेकिन आजकल इसकी जगह दूसरा सिद्धांत कौन सा आ गया है, लिव एंड लेट लिव की बजाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो शक्तिशाली है उसे जीने का अधिकार है। सर्वाइवल ऑफ द, ये तो जंगल रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल में देखते हैं एक जानवर अपने से छोटे जानवर को खा लेगा, मार देगा, उससे बड़ा जानवर अपने से दूसरे उस छोटे जानवर को, और अल्टीमेटली शेर जंगल का राजा है, बस सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और दूसरे पशु वगैरह जैसे कि उनको जीने का अधिकार नहीं। ये जंगल रूल है, ये सिविलाइजेशन का रूल नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन ये है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और दूसरा सिद्धांत है जो हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारे कुटुंब है, परिवार है, पृथ्वी पूरा। और जब इस सिद्धांत को हम मान लेते हैं ना, तो आज की जितनी भी दुनिया में समस्याएं हैं कोई भी समस्या रह नहीं सकती। आज देखिए एक समस्या कौन सी, आजकल की सबसे बड़ी समस्या जिस पर विश्व की नजर है, पूरे वैज्ञानिकों की, पॉलिटिशियन की, कौन सी है सबसे बड़ी समस्या? नहीं, ये तो देश देशों का युद्ध है, मनुष्य इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यानी प्रकृति के साथ जो हमारी ना डिसहार्मनी पैदा हो गई है वो बड़ी, क्योंकि एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये फिर भी मनुष्य के हाथ में, मनुष्य बटन दबाएगा तब एटम बम चलेगा, विनाश होगा आदि आदि, लेकिन ये तो ऐसी परिस्थिति है, नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं, कहीं पर भी अर्थक्वेक, अभी चिली में ही आ गया दो दिन पहले अर्थक्वेक, कहीं पर भी नेपाल में आया, कहीं पर भी सुनामी हो जाती है, फ्लड हो जाते हैं, सूखा हो जाता है, आग जंगल में, अमेरिका में भी कई जगह आग लगी हुई है आदि आदि, कैलिफोर्निया वगैरह। तो क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं जिस पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या। और इसका भी मुख्य कारण क्या है कि प्रकृति के तत्वों के साथ मनुष्य की हार्मनी नहीं रही है। देखिए, मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो छोटा होता है, बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, माँ ही उसका संसार है। बस इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, ये धरती माता के साथ लगे रहते हैं जीवन पर्यंत, और वहीं से उन्हें भोजन आदि मिलता है। तो ये सबसे छोटे बच्चे, फिर बच्चा जब बड़ा होता है मनुष्य का, दो चार छह महीने का होता है, दो हाथ दो पैर घुटने से चलता है ना, तो ये चौपाए जो है, पशु जो है, ये जो है हमारे परिवार के सेकंड यंगेस्ट मेंबर है, क्योंकि परिवार में बच्चा होता है सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा होता है घुटने और दो हाथ से चलता है, और फिर और जब बड़ा होता है बस हम सब की तरह दो पैरों से चलता है। तो ये वी आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वसुधा जो परिवार है इसके हम सबसे बड़े सदस्य हैं, हमारे से जो छोटा सदस्य है वो पशु पक्षी जीव जंतु हैं, और उनसे छोटे सदस्य हैं पेड़ पौधे, ये जो धरती माता के साथ लगे रहते हैं। तो अपने ही परिवार के छोटे सदस्यों को कोई हानि पहुंचाएगा क्या? लेकिन भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया उसको हम समझ नहीं सके, वसुधा ही कुटुंब है, यानी मनुष्य मनुष्य, हिंदी चीनी भाई भाई, या हिंदी मुस्लिम भाई भाई आदि कह देते हैं, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है। वसुधा इसमें तो सब आ गया जो रहते हैं वसुधा में, मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु सब कुछ है। उसे हमने कुटुंब नहीं समझा और इस कारण से यही सबसे बड़ी समस्या आज हो गई है। और इसी के कारण ही मनुष्य के अपने अनेकानेक प्रॉब्लम्स का जो जन्म हुआ है, और उन प्रॉब्लम्स के कारण ही मनुष्य को जब ये फीलिंग, अलग अलग जो परिस्थितियां आती हैं उसमें रिएक्शन भी मनुष्य का अलग अलग होता है। तो एक तो ये सिद्धांत दोनों हम हमेशा बुद्धि में रखें, जियो और जीने दो, और दूसरा वसुधैव कुटुंब का। वसुधा में जो भी है वो सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, और ये अगर हम फीलिंग में रखते हैं तो बस हमारे व्यवहार में भी अगर ये आता है, आप देखेंगे धीरे धीरे ना परिवार के अंदर जी और जीने दो, कोई कभी झगड़ा ही नहीं होगा। परिवार प्रॉब्लम ही तब आती है जब मैं बड़ी हूं, ये छोटी है, इसका अनुभव कम है, मैं बड़ा हूं, बस तभी संबंधों में कटुता आती है। तो ये सिद्धांत को हम जीवन में सदैव याद रखते रहे। साथ ही साथ जब एंग्री फीलिंग आए ना, तो यूजुअली तीन प्रकार के बिहेवियर होते हैं। एक एग्रेसिव वे मनुष्य जो वायलेंट हो जाता है बोलने में, एक एसर्टिव वे कि हाँ बुद्धि के साथ व्यवहार करे, और तीसरा है सप्रेसिंग, अपने को बिल्कुल ही विड्रॉ करे, चलो भाई जो हो रहा है। तो ये तीन प्रकार के वे होते हैं। तो इसमें कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है? ना तो एग्रेसिव ना सप्रेसिंग, एसर्टिव, अपने को बुद्धि में बैलेंस रखते हुए उस सिचुएशन से डील किया जाए। कैसे किया जाएगा वो, उससे डीलिंग वो इसमें बड़ा सहज, अपने को चेक करते जाना आप सभी लोग कि हम किस परिस्थिति में कैसे डील करते हैं। तो जो एसर्टिव है, हम सभी चाहते हैं जिंदगी में हम विजयी बने, विजेता बने, जीवन में और आगे बढ़े, और उसके लिए एसर्टिव पीपल जो हीरो होते हैं जीवन में, वो कैसे, वो उनका इसके अंदर दो प्रकार का इसमें कंपैरिजन बताया गया। एसर्टिव जो अपने को एसर्ट करके चलते हैं, अपने को सही मान के, सही माने उनका नियंत्रण रहता है परिस्थिति के ऊपर, और दूसरा एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। दोनों में क्या अंतर होगा, अपने को आप चेक करते रहना। जब कभी मुझे गुस्सा आता है तो क्या मैं स्पीक फर्मली एंड डायरेक्टली, बस फर्मली करें, लेकिन उसकी जगह हम स्पीक लाउडली एंड बॉसेस, बॉसेस वे में, मैंने ये कहा ना तुम्हें ये करना ही है, ये बॉसेस वे हो गया, और लाउडली अपने आप ही वॉल्यूम आवाज का तेज, इसका मतलब ये जो है अप्रोच हमारी गलत है, एग्रेसिव है। फर्म रहें कोई भी बात है, लेकिन शांति से उस बात को वो करें। दूसरा, डोंट ब्लेम अदर्स बट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन फीलिंग। अक्सर करके दूसरे को ब्लेम करना ये हमारी बचपन की आदत हो जाती है, एंड इसमें उसके वो क्या करते हैं एग्रेसिव पीपल, और दूसरे की फीलिंग को वो नहीं करेंगे, अपने आप ही वो करेंगे, ये नहीं सोचेंगे वो भी मनुष्य है, अगर मैंने कुछ ऐसा बोला उसकी फीलिंग हर्ट होगी, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, तो हम अक्सर करके दूसरे की तरफ ही उंगली उठाते हैं। मुझे एक घटना याद आती है, अक्सर करके हम लोग वो करते हैं उसको कोट, माताओं को खास मालूम होगा, बच्चा जब छोटा होता है ना, जैसे मैं बता रहा था भाई, चलना शुरू करता है पहले घुटने से, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, और खुशी होती है माँ बाप और सभी को, परिवार वालों को, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, एक दो कदम बढ़ाया, थोड़ा गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना, इस तरह प्रोसेस में वो चलना शुरू करता है। और कभी कभी वो जब बहुत तेजी से चल रहा है, कदम आगे बढ़ रहा है, तो दीवार से टकरा जाएगा या जमीन पे गिर गया, रोने लगेगा। तो माँ क्या करती है, क्या करती है, आप सब बैठी हो ना माता है, क्या करते हो, उठा लेते हैं, उठा तो लेते हैं, लेकिन अक्सर करके हमने देखा है माँ धरती को ऐसे पारेगी, है जैसे धरती का दोष है, तुम गिर गए, और बच्चा भी देखता है, वो धरती को भाई मार रही है माँ, वो भी देख के खुश हो जाता है और फिर रोना बंद कर देता है। यानी बचपन से ही हमने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी कि तुम गलत नहीं हो, दूसरा गलत है। अब बच्चा, धरती तो वही है, दीवार वही खड़ी है, बच्चा ही चल रहा है, वही अगर टकरा गया तो गलती तो उसकी है, लेकिन बचपन से बच्चे को चुप करने के लिए हम धरती को ब्लेम करा। और अक्सर तो ये प्रोग्रामिंग ही, बस हम सभी के अंदर ये बचपन से ये प्रोग्रामिंग है, दूसरा गलत है, मैं सही हूं। और इस कारण से ही जब हम अपने को हमेशा सही समझते हैं, दूसरे को सही नहीं समझते हैं, ये क्रोध का रूप हो जाता है। तो आवश्यकता क्या है, अपने को हम इंट्रोस्पेक्शन करें। बड़ा अच्छा एक वो है, कहा है किसी ने, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, लेकिन हम समझते हैं आईने की प्रॉब्लम है, आईने पर धूल है और बस उसको हम साफ करते हैं। दूसरे को हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसको करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने को रिफॉर्म नहीं करते। तो आवश्यकता यह है पहले हम इंट्रोस्पेक्शन में अपने को देखें। और इस रीति से जो क्रोधी होगा वो और क्या करेगा, एकदम तुरंत रिएक्ट करेगा, कोई भी बात हुई एकदम रिएक्ट कर देगा, और वो अक्सर करके क्रोध का रूप होता है। गिलास टूट गया बच्चे से, एकदम सपोज तुरंत ही क्रोध का रूप में, ये क्या किया तुमने, देख कर नहीं चलते हो, अंधे हो क्या, आदि आदि वो रिएक्शन। और जो एजर्टिव जो होगा, अपने को वो बुद्धि के आधार पर चलाएगा, वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा सोचेगा, समय देगा, उसके बाद वो अपना रिएक्ट करेगा। तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में विजयी होता है। और दूसरे का भी सदा सबका रिस्पेक्ट भावना करनी चाहिए, और मैं ही विजयी न बनूं, दूसरों को भी जीवन में विजयी बनाऊं। लेकिन और इसका इफेक्ट क्या होता है, वो ये आवश्यकता है ना। देखो हार्ट अटैक, आजकल हार्ट की बहुत प्रॉब्लम आती है, और देखिएगा हर एक कोई, देखिए यहां भी मेरी तरह भी कोई कई लोग बैठे होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हार्ट प्रॉब्लम अगर आई होगी। तो हार्ट पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो इसमें बताया गया। पहला, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो थोड़े स्टिफ होते जाते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर जो है, जितना क्रोध करता है आदमी उतना वो स्टिफ भी होंगे, क्लॉटिंग क्लोरिस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्लॉटिंग होती रहेगी, और उसके कारण एंजाइना पेन होगा, या कई बार हार्ट अटैक भी आ सकता है, एमआई भी हो सकता है। दूसरी बात, इसके कारण क्रोध करने के कारण ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप होता है, और आप देखो जब कभी शांति में हो एकदम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अपने आप ही ब्लड प्रेशर डाउन वो आता चला जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी थिंकिंग से है, और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी ना वो भी कम हो जाती है, ये तो हार्ट के ऊपर है। तो देखो ये तीन चीज है जो कल भी बताई जा रही थी, दिल, दिमाग और ये हाथ, हार्ट, हेड एंड हैंड। तो हार्ट पर तो ये इफेक्ट हुआ, हार्ट के साथ साथ और क्या इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, वो भी देखिए कितना डेंजरस होता है। क्रोध जब व्यक्ति करता है ना, तो ब्रेन के अंदर भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और माइक्रो वेसल, बहुत पतली, बाल से भी पतली वेसल्स होती हैं जिनके की अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और इस कारण से कई बार क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट के कारण पैरालिसिस हो जाती है, स्ट्रोक, मेंटल स्ट्रोक आ जाता है। तो ये क्रोध, क्योंकि क्रोध के कारण कोई चीज है, आप उसकी कैपेसिटी है अगर कुछ 5 cc की, लेकिन अगर उसमें जबरदस्ती हम 10 cc 15 cc पंप करेंगे, बर्स्टी होगी वो ट्यूब भाई। बस यही हाल क्रोध में, बहुत प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, तो इसलिए अक्सर करके ये प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर और क्या जो इफेक्ट ऑन मसल्स, मसल्स के ऊपर क्या प्रभाव होता है व्यक्ति का, ये देखिए टेंशन इंक्रीजिंग। और 80 से अधिक मसल्स हैं जो जिसके कारण हेडेक या बैकएक होने लगता है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द या सिर दर्द। अक्सर करके जब क्रोध आदमी बहुत बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, वो खुद ही परेशान हो जाता है, खुद ही अपना माथा वो पकड़ के बैठ जाता है। एक ये समस्या, क्योंकि मसल जो है ना वो उसके अंदर टेंशन बहुत बढ़ जाता है। और इम्यून सिस्टम में हमारे पाचन क्रिया और दूसरे उसमें क्या फर्क पड़ता है, बस स्पेशल कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसके कारण ये है, बस ये जो आपको बताया अल्सर, एसिडिटी। और अल्सर का निर्माण हमारे बिहेवियर पर ही ऑलमोस्ट 100% डिपेंड करता है, क्योंकि खान पान वो सब भी जैसा व्यक्ति का बिहेवियर होगा अकॉर्डिंगली उस अनुसार उसका खान पान भी वैसा होता है। तो देखिए माइंड पर, हार्ट पर, पूरी बॉडी पर, मसल्स पर कितना एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसी कारण से जब व्यक्ति टेंशन में रहता है तो आजकल बहुत जगह लाफिंग क्लब भी बन गए हैं। हा? देखो मुस्कुराने के लिए भी एक बच्चा पालने में पड़ा रहता है, कितनी बार मुस्कुराता है वो, कहते हैं साइंटिस्ट वगैरह जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक दिन में वो 300 से ज्यादा बार मुस्कुराता है, मोर देन 300 टाइम्स। अब हम अपनी तरफ देखें, हम बच्चे से अब बड़े हो गए, हम कितनी बार मुस्कुराते हैं, कितनी बार मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के लिए भी लाफिंग क्लब बनाए हुए हैं, वहां जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ गई है। तो इसीलिए खुश नुमा जीवन के लिए बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, क्योंकि जीवन में ना ये काफी हद तक परिस्थितियां भी जिम्मेवार है, वो सही बात है, लेकिन रिएक्शन तो मेरे हाथ में है ना। बड़ा अच्छा क्या परिस्थिति के लिए, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन जो जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जीवन में हार देखने में आए उस समय भी हमारी मानसिक स्थिति इतनी बैलेंस्ड हो, जो गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, ये जो मानसिक योगी की स्थिति जो होती है, स्थित प्रज्ञा जो बोला गया है, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, जितनी एडवर्स विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। और यहां ये जो योग आपको सिखाया जा रहा है, राजयोग, जिसका आज पहली कड़ी थी आत्मा की, फिर परमात्मा का बताया जाएगा और फिर तीसरे लेसन में योग की विधि बताई जाएगी। तो ये योग जब आप सीख जाएंगे और इसका अभ्यास करेंगे ना, तो ये जो गीता में कहा है आप खुद अनुभव करेंगे, अरे उसने अपमान भी कर दिया, मेरी पराजय भी हो गई और नुकसान भी हुआ, ऐसे अलग अलग, लेकिन फिर भी मेरा मेंटल बैलेंस काफी हद तक कायम है। और उससे क्या होगा, जब मेंटल बैलेंस रहेगा तो न तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, न डिप्रेशन होगा, न हार्ट पर, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, संबंधों में भी मधुरता रहेगी, बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। और बस यही नहीं होगा मैं ठीक हूं, बल्कि मैं भी ठीक, आप भी ठीक, आई एम ओके, यू आर ओके ऑल्सो। ये जीवन की स्थिति जब रहती है तो क्या होता है, मनुष्य बस क्रोध की परिस्थितियां तो आएंगी जीवन में, ये नहीं कि नहीं आएंगी, लेकिन मेरा रिएक्शन उसमें बदल जाएगा, पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो फिजिकल तो आपने देखा, और मेंटल क्या स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो जब उस स्थिति में मेंटल में ना आदमी का एक अशांति की परिस्थिति होती है, हैप्पीनेस का फार्मूला देखा ना, ऐसे पीस का भी कोई फार्मूला है? क्योंकि मनुष्य जीवन में चाहता ही दो चीज है। कौन सी चीज? अब तो पता चल गया ना, एक तो हैप्पीनेस और दूसरा पीस। तो पीस के लिए क्या फार्मूला है? एनी फार्मूला पीस के लिए? यस, पीस क्या नहीं चाहता? हाँ, वी आर कमिंग, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अभी हैप्पीनेस बताया, पीस बताया, प्रॉस्पेरिटी पर भी आएंगे, इसीलिए दैट विल ऑल्सो कम। बट आज ऐसे बहुत घराने हैं, बहुत आप जिस पर पैसा नहीं होता है ना, वो तो समझता है पैसे से ही सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन आप उनके पास जाइए, वो कहते हैं ये पैसा ही। बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन परिवार बढ़ जाते हैं, अशांति हो जाती है, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। वो कोई फिल्म में भी था ना डायलॉग, है मेरे पास ये है, धन है, धन है, ये है, मकान है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? क्या बोला उसने? माँ है। हर एक को, दिल को टच करने वाली बात। क्या कितना अच्छा लगता है संबंधों में मधुरता। और ये जो चीज है ना, ये ही डॉक्टर भी कहते हैं, जितना आपका ना हैप्पीनेस लेवल है, उतना बीमारियां दूर रहेंगी। पैसे से दूर नहीं रहेंगी, पैसे से आप दवाई खरीद सकते हो, लेकिन वो गोली एक दिन भी नहीं खाएंगे, फिर बीपी शूट कर जाएगा। वो कहता है जिंदगी भर तुम्हें खानी है ये गोली, जिंदगी भर ये हार्ट की खानी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहता है कि भाई अगर तुम्हारे खुश रहे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसा निकला। ये हमारे यहाँ एक कोर्सेस चल रहे हैं, कैड कोर्सेस। कैड माने कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, आपको पूरी डिटेल मिल सकती है उसमें। और उसमें अक्सर ये समझा जाता था 10-12 साल पहले तक कि हार्ट की आर्टरीज जब ब्लॉक हो जाती हैं तो बस एक ही इलाज है, कौन सा? बाईपास सर्जरी, और कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन पिछले करीब 12 साल से ये यहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और 6000 से ज्यादा पेशेंट पर यह प्रयोग किया गया है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनका एंजियोग्राफी लिया गया। एंजियोग्राफी में देखा गया 80 से लेकर 99% तक ब्लॉक्ड, ज्यादातर की 95% से 99% तक ब्लॉक्ड आर्टरीज। तो उनका जब देखा गया, डॉक्टरों ने बोल दिया, बहुत एम्स के हों चाहे अलग अलग डॉक्टर्स हों एस्कॉर्ट के, कि भाई बाईपास के अलावा कोई नहीं। उन्हें पता चला यहां पर ये भाई होता है, यहां आए, और यहां आके उनका लाइफस्टाइल चेंज किया गया, एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स एंड राजयोग मेडिटेशन असली चीज। और इसके बाद 6 महीने बाद फिर उनकी एंजियोग्राफी की गई, 1, 2, 10, 20, 100, 200 पेशेंट नहीं, 6000 तक। हालांकि बैचेस में होते हैं 50-100 के, इसी ने पिछले 12 साल में लगभग 6000। और डॉक्टरों को सरप्राइज हुआ जब दुनिया भर में उनके रिजल्ट भेजे गए कि अरे जिसकी आर्टरी ब्लॉक थी 99% तक, उसकी कम रह गई, 80 हो गई, 75 हो गई। जो 10 कदम नहीं चल पाते थे वो आज 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ऐसे हजारों पेशेंट हैं, उनके नाम, और ये बताए ना 6000 पेशेंट, रिजल्ट, सक्सेस ऑफ द रिजल्ट इज 93%। तो कितनी ग्रेट सक्सेस है। और ये राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि कंट्रोल रन भी लिया गया, कंट्रोल ग्रुप भी, और वो कंट्रोल ग्रुप में उनको लाइफस्टाइल, वो फूड हैबिट्स चेंज की गई, एक्सरसाइज, लेकिन राजयोग मेडिटेशन नहीं बताया गया। तो उनका रिजल्ट इतना एनकरेजिंग नहीं था, उनमें भी चेंज आया लेकिन उनका 30-40%, लेकिन इनका 93% तक पूरी आर्टरीज खुल गई सारी। तो ये हैप्पीनेस का, ये इनडायरेक्टली पैसे की बचत आज एक वो होती है। आपने पैसे की बात कही ना, तो ये राजयोग मेडिटेशन से आप पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, बात वही है, बच रहा है, एक एक उसके लिए लाखों रुपए लगते हैं, आप जानते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, इसके पूरे वहां पर रिजल्ट भी है। अगर आप शांतिवन जाएंगे, वहां डॉक्टर गुप्ता करके हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता, उनके पास पूरे सबके एंजियोग्राफी, सबका रिजल्ट, अभी 15-20 दिन पहले, महीना पहले ही एक वर्ल्ड कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी होकर चुकी है। तो ये तो मैंने आपको एक वो बताया कि किस प्रकार से लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से और राजयोग मेडिटेशन से केवल विचारों की शुद्धता नहीं होती। जब विचारों की शुद्धता होती है, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है बॉडी के अंदर, वो बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट्स वगैरह और धीरे 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 वो निकलने लगते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स ही आते हैं और शरीर के विभिन्न अंग जो है ना, किस प्रकार से बीमारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो भी चलता है, ये तो माउंट आबू में आप जाएंगे, डॉक्टर श्रीमंत है, डायबिटीज कैंप वहां पर यही होता है कि डायबिटीज कैंप पहले दिन जब वो आते हैं, उनके सारा पैरामीटर लिए जाते हैं, फिर 6 दिन का कोर्स होता है, 5-6 दिन में उनको अलग अलग एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, पूरी बात बताई जाती है। अब 5 दिन के बाद जब देखते हैं तो बहुत बहुत फर्क होता है शुगर लेवल में, वेरी वेल, जो इंसुलिन 2-2 वक्त लेते थे वो ओनली टेबलेट पर आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे ओनली टेबलेट्स वो भी निकल जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। तो भाव क्या है कहने का कि राजयोग मेडिटेशन ये हमारी शारीरिक व्याधियों के लिए भी एक रामबाण औषधि है, और इसीलिए पीस एंड हैप्पीनेस, पीस का कोई फार्मूला है जैसे हैप्पीनेस का वो फार्मूला बताया, ऐसे पीस का भी एक फार्मूला है। मनुष्य के अंदर इच्छाएं तो होती हैं, तो डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय डिजायर्स अनफुलफिल्ड, यानी इच्छाएं, तृप्त इच्छाएं डिवाइडेड बाय अतृप्त इच्छाएं। तो ये हम सभी जानते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं तो होनी चाहिए, एम्बिशंस अगर नहीं होंगी लाइफ में तो आगे कैसे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो अभी नहीं रहे, तो वो तो हमेशा ही कहा करते थे कि एम्बिशस रहो भारत के लिए। उन्होंने 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन का भी फार्मूला दिया, तो उसके अंदर तृप्त इच्छाएं डिजायर्स और एम्बिशंस, इन दोनों में अंतर है। एम्बिशंस होनी चाहिए आगे बढ़ने की, प्रमोशन के, वो सब इच्छाएं रखनी चाहिए, लेकिन दे शुड बी वेल अंडर माई कंट्रोल, मेरे माइंड के अंदर कंट्रोल में रहेंगे तो वो इच्छा ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा हो गया, मुझे नींद नहीं आती है उसकी वजह से, मुझे उसके ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसकी वजह से प्रॉब्लम शरीर में हो गई, तो इसका मतलब वो एम्बिशंस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा, बल्कि एम्बिशंस का मेरे ऊपर कंट्रोल हो गया, और देन दे बिकम डिजायर्स। तो इसीलिए डिजायर्स का मतलब तृप्त इच्छाएं डिवाइडेड बाय अतृप्त, जितनी मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं रहेंगी उतना मेंटल पीस लेवल क्या होगा, कम होगा, अशांति होगी मन के अंदर। तो इच्छाओं पर नियंत्रण करना ये आवश्यक है, और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया मन के लिए, मन के अंदर ही इच्छाएं होती है ना, कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत माया जीते जगत जीत। और गीता में भी कहा है सारा ज्ञान सुना के, मन मना भाव, मन को मेरे में लगा। तो इस कारण से ये मन की मेंटल स्ट्रेस ये जो होता है, तो उससे ही पीसलेसनेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये वरीज, ये सब चीज आती है। निगेटिव थिंकिंग वो आती है, इरिटेबल मनुष्य अधीर होता है, हमारी फीलिंग और बदला लेने की भावना, ये सब हमारे वो आता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह डेवलप हो जाता है, जजमेंट पावर अक्सर करके हम बोलते क्या हम भूल जाते हैं, मेमोरी थोड़ा कम होने लगती है और हमारा बिहेवियर ऐसा होने लगता है। लोग कहते हैं अब तो पहले तो ये अच्छे थे, अब जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं आदि आदि। तो ये सब समझना चाहिए कि मेंटल स्ट्रेस के अंदर मैं जी रहा, मन के अंदर तनाव है। कई बार बाहर का तनाव तो पता चल जाता है लेकिन मन का तनाव नहीं। तो फिर इसके अंदर क्या होना चाहिए ना, परिस्थितियां बाबा परमात्मा जो है वो बताते हैं, जब ऐसे हो तो एंगर का प्रभाव अल्टीमेटली वो अगर हमारे पता चल जाता है तो हम इसके बाद इस पर ये करते हैं कि क्या आउट ऑफ कंट्रोल अगर चला जाता है तो वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर प्रॉब्लम होता है, संबंधों में दूरी बनने लगती है। कोई बहुत क्रोधी होगा लोग उससे दूर ही दूर रहना पसंद करेंगे, साथ साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी फर्क हो जाती है। क्रोध करेंगे तो संबंधों में भी कटुता आएगी और साथ हमारा जीवन भी नीरस जैसा, एकाकीपन जैसा होने लगेगा, दुश्मनी का भाव बढ़ेगा और जिद स्टबबॉर्ननेस की भावना ये सब बढ़ती है। अब हम ये देखते हैं साथ ही साथ कि कैसे क्या क्या स्टेप है, अभी तक भी देखे लेकिन अब इसके अंदर ये देखने हैं कि कौन कौन से स्टेप से हम कंट्रोल कर सकते। कभी मानो ऐसी परिस्थिति आई, गुस्सा हुई, गुस्सा करने की परिस्थिति, आप उसे क्या करो, पोस्टपोन, आज पोस्टपोन कर दो, एक दिन के लिए, एक कुछ घंटों के लिए, एक घंटे के लिए, कुछ नहीं तो चलो भाई ठीक है मैं दो मिनट बाद उस बात का जवाब दे। मतलब आपको सोचने का कुछ टाइम मिल जाएगा तो आपके अंदर जो एकदम मानसिक उग्रता बढ़ रही है वो उग्रता को कंट्रोल होने का, एकदम रिएक्शन मत कीजिए कोई भी चीज का उसके ऊपर। अच्छा मैं आपको, किसी ने कोई बात कही तुरंत उसे जवाब मत दीजिए, ठीक है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, और साथ ही साथ उसके जब डिसीजन पोस्टपोन हो जाता है ना, और अवेयरनेस, ये जागृति की आवश्यकता है क्या, जो आपको बताई यहां पर पहले ही पहले ना, कि आंतरिक इस आत्मा का ये पार्ट है, मैंने तो 10 बार इसे समझा दिया, ये नहीं समझा, चलो इसका ये पार्ट है, ये भी ड्रामा में एक्टर है, मैं भी एक्टर, मेरा समझाने का पार्ट था, उसका न समझने का पार्ट है। तो जब एक्ट इस स्थिति पर आते हैं तो हम दूसरे को यथार्थ समझ सकते हैं। दूसरी बात, उसमें और क्या क्या करना चाहिए, रीप्रोग्रामिंग, ये आपको मैंने बताया ना, प्रोग्रामिंग हमारी बचपन से ये है कि मैं सही हूं ये गलत है, लेकिन माइंड को फिर से रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि मैं ही सही नहीं हूं, दूसरे भी सही हो सकते हैं। इस कारण से कोई भी बात हो अपने को ये दूसरा मोटिव पहचानना चाहिए, दूसरे का अंदर है क्या, भाव क्या है। कई बार शब्द पकड़ लेते हैं हम, अंदर व्यक्ति की भावना वैसी नहीं होती, वो खराब नहीं होता, लेकिन शब्द पकड़ने से हम उसे गलत समझ लेते हैं और इस कारण से प्रॉब्लम आती है। कई बार बच्चे को दिखाने के लिए ना, बच्चा है, हमें क्रोध की एक्टिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से हम चेक करें, मुझे अंदर से तो क्रोध नहीं आ रहा, ऊपर से दिखाने के लिए एक्टिंग करें उसमें कोई वो बात नहीं, लेकिन अंदर से अगर वो क्रोध हो जाता है वो जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति हो ना तो सोशल सर्विस में थोड़ा सा निकल जाए और सोशल सर्विस में लोगों की मदद करें। एक परिस्थिति और होती है कि असली बात होती है, कभी ऐसी परिस्थिति आए हैं तो बस किसी को भी, अच्छा 5 मिनट बाद कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आई तो खुद साइलेंस में बैठने की स्थिति को में आप कोशिश करिए कि मैं विड्रॉ कर लूं थोड़ी देर के लिए उस स्थान से, फॉरगिव एंड फॉरगेट, उस व्यक्ति को ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये परिस्थिति थोड़ी सी जरूर, कहते हैं गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, ईश्वर देता है और भूल जाता है, और मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, मनुष्य लेता है और फिर वो भूल जाता है. तो गॉड गिव्स एंड फॉर गिव्स, क्षमा दान. क्षमा भी देखिए, हर मनुष्य में दो शक्तियां विशेष होती हैं जब से वो पैदा होता है. कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति. बचपन से हमारे में ये दो शक्तियां होती हैं. लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो हम भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है. दिस इज, ये विडंबना है जीवन की. तो भूलने की शक्ति भी जीवन में बहुत है. किसी ने अपमान करा, निंदा करी, उस बात को भूल जाने के में ही हमारा कल्याण है. जिंदगी का सफर, कहा है किसी ने, जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया. जीवन के अंदर बस आई एम सॉरी, ये शब्द ऊपर से नहीं अंदर से अगर कहे जाते हैं ना तो कटुता बहुत हद तक खत्म हो जाती है. लेकिन हमारा ईगो हमें ये कहने नहीं देता. किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, इससे जिंदगी का सफर बहुत सहज. क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं. क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं. जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा कभी. जो वीर होगा, महावीर, गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी जी आदि आदि जो महान व्यक्ति होके गए हैं, उनमें यह विशेष गुण था क्षमा करने का. और क्षमा में हमें ही फायदा है. क्षमा कर दिया, उस बात को भूल गए. हम तो इस संस्था में बहुत वर्षों से हैं. प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिनके द्वारा परमात्मा ने, उनके साथ भी रहे, और हमारी नेक्स्ट जो दादी जी थे, हम देखते थे. बड़ी से बड़ी घटना भी हो जाती थी, कोई व्यक्ति आके कोई बोल गया, मान अपमान भी कर गया, बस नेक्स्ट क्षण थोड़े दिन में ही वो उस बात को भूल जाते थे और उस व्यक्ति से ऐसे ही प्रेम से बात करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. ये भूलने में ही कल्याण है. तो इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत बड़ा. और अपना इसमें सहन शक्ति का भाव, धैर्यता का भाव बहुत आवश्यक है. इससे ही जीवन में पीस एंड हैप्पीनेस वो आ जाती है. अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. और इन सब के लिए मेडिटेशन ये बहुत आवश्यक है. जो अभी आप सीख ही रहे हैं, आज पहला ही दिन था, अभी आप सीखेंगे तो मेडिटेशन भी. और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, गहरे सांस लेना, गहरा छोड़ना. और उससे क्या होता है, जब मोर ऑक्सीजन आती है लंग्स के अंदर तो बॉडी भी एकदम ना रिजुविनेट होती है. और आत्मा और शरीर का तो बहुत गहरा संबंध है. प्रॉब्लम तब होती है जब आत्मा और शरीर में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है. जिस्म और रूह का एक अजीब इत्तफाक देखा कि जिंदगी भर साथ रहे फिर भी रूबरू ना हो सके. जिंदगी भर साथ रहती है आत्मा शरीर में, लेकिन आत्मा की बात कई बार शरीर नहीं मानता. आत्मा बोलती है ये मत करो, शरीर एकदम फटाफट क्रोध में कुछ भी बोल देता है, कर देता है. तो इस कारण से आवश्यकता ये है, शरीर, आत्मा और शरीर में जब पूरी अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी हो जाती है, जो कल बताई जाती थी, हार्मनी बिटवीन हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग के अंदर पूरी हार्मनी होनी चाहिए. दिल जो बात कहे दिमाग माने, दिमाग कहे दिल, अक्सर करके दोनों में युद्ध हो जाता है. तो दोनों के अंदर हार्मनी आती है योग के प्रयोग के द्वारा, मेडिटेशन. और उसका असर कहां पड़ता है, जब मन में जो बात होती है, इसी ने कहा जाता है मन वचन कर्म. मन में जो बात अगर होगी वही वाणी में होगी. मन में प्रेम का भाव होगा, वाणी में आएगा. और इस कारण से क्या होगा, मन के अंदर ना, बस पहले मन के संकल्पों को चेक करना वो बहुत आवश्यक है। मन के अंदर जितने संकल्प हमारे चेक होते रहेंगे, वाणी में मन में प्रेम होगा, वाणी में प्रेम के भाव आएंगे। मन में क्रोध होगा, वाणी में आएगा, कर्म में भी आ सकता है। तो इस कारण से आवश्यकता इस बात की है कि जीवन के अंदर ये स्टेप्स को और क्या करें साथ साथ। कई बार क्रोध की परिस्थिति हो रही है, एक आदमी क्रोध कर ही रहा है, आप देख रहे हैं वातावरण गर्म होता जा रहा है, उस जगह को छोड़ करके टेम्परेरी चले जाओ। क्योंकि जब क्रोध होता है, एक आदमी दूसरे की बात नहीं मानता, आप जितना भी समझाने की कोशिश करें उस स्थिति को चेंज कर दीजिए, वहां से छोड़ करके थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे तो क्या होगा, वो वातावरण धीरे धीरे नॉर्मल बनने लगेगा। और साथ साथ जब कभी हम थोड़ा बहुत सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, एक बात और है, जब क्रोध आता है ना तो क्या करना चाहिए मनुष्य को, आप सबका अनुभव, क्रोध करते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक तो ये बोला ठंडा पानी पी लो, धीरे धीरे जैसे ठंडा पानी पियेंगे वो भी थोड़ा इफेक्टिव होता है, और दूसरा है एक काउंटिंग, हाँ रिवर्स काउंटिंग। सीधी काउंटिंग तो हम फटाफट कर जाएंगे, अगर रिवर्स काउंटिंग होगी ना तो वी आर अर्निंग टाइम, और वो आप मानो 100 से उल्टी गिनती शुरू करो करो और एक तक, तो तब तक आप ना टाइम आपने गेन कर लिया तो टेम्परेचर लेवल, क्रोध का लेवल दोनों पार्टीज का वो कम हो जाएगा। लेकिन सबसे इफेक्टिव एक बात देखी है, आपको ही जब क्रोध आ रहा हो उस समय आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा, समझेंगे नहीं, क्रोध है, वो बोलेगा आप क्रोध मत करो, तू कौन होता है समझाने वाला, बहुत बातें आएंगे। खुद जाके क्या करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, फेस मिरर, हाँ बस मिरर के सामने खड़े होंगे हमेशा। तो आदमी जब कभी भाई घंटों तक भी खड़ा रहेगा, थोड़ा अपना मेकअप करेगा, ये करेगा वो, आदमी अपने को बहुत पसंद करता है, लेकिन जब क्रोध आता है उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, जब क्रोध के समय वो चेहरा देखेगा ना, अपने को इतना डिसलाइक करेगा कि अरे मैं ऐसा दिखता हूं। नेक्स्ट टाइम क्रोध के समय उसे अपनी वही चेहरा याद आ जाएगा और फिर वो उस परिस्थिति से पास नहीं होगा। इसलिए ये चेहरा ये एक बहुत काउंट करता है। और एक डॉक्टर लोग बोलते हैं ये चिन्ह है ना, ये ठोड़ी, इसको थोड़ा प्रेस, यहां पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ब्रेन को और उन सेल्स को जो ये क्रोध, तो वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो चिन्ह को प्रेस करने से ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उससे नॉर्मल स्थिति बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये कुछ स्थूल और कुछ सूक्ष्म आपको बातें बताई गई जिससे कि आप क्रोध में, और कुछ जब यहां से जाएंगे ना आप कुछ स्लोगन ले जाना अपने साथ, कौन सा, एक तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, एक छोटा सा पतला सा स्लोगन की चिटकी है, घर में लगा देना, दीवार पर, दरवाजे पर, कहीं पर। अक्सर करके बोलने के कारण ही क्रोध बढ़ता है परिवार के अंदर, तो इस कारण से कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो भी पढ़ते रहेंगे ना सभी परिवार के सदस्य, धीरे धीरे जो रोज चीज देखो उस पर इफेक्ट आता है, एक वो परिस्थिति होती है। इस कारण से एक वो करें। दूसरा कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, इसमें लोग कई बार समझते हैं क्रोध तो क्रोध को ही काटेगा, लेकिन नहीं, कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है, काटता है माने गरम लोहा होता है ना, उस पे जब छोटे ठंडे लोहे की चोट करते हैं तब उसे मोड़ सकते हैं। अगर गरम लोहा गरम लोहे को, वो तो जो जिसकी चोट करेंगे वो खुद मुड़ जाएगा, वो उसे चेंज नहीं कर सकता। तो गरम लोहे को ठंडा लोहा वो उसे परिवर्तित कर सकता है, काट सकता है। इसीलिए हम जितना शीतल होंगे, शांतिमय स्थिति होगी हमारी, उतना हम क्रोधी व्यक्ति के ऊपर ना विजय बहुत महापुरुषों की कहानियों में 50 बार पढ़ा है हम लोगों ने। दूसरा जितना भी क्रोध करता रहे हम अगर शांत और शीतल रहेंगे तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे कहने से ज्यादा हमारे व्यक्तित्व का हमारे व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। और बस ये रहो कि हाँ मैं क्रोध को कंट्रोल कर सकता हूं, नहीं तो कहते क्या करें क्रोध आ जाता है और क्रोध आने से क्या होता है फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार हम लोग ये बोल देते हैं। और इसके साथ साथ अभी आजकल कौन से दिन चल रहे हैं है? कौन से दिन चल रहे हैं? गणेश चतुर्थी के। और इस गणेश चतुर्थी के दिन ना और उस पे हम कुछ संकल्प ले, देखो मुझे एक ये कहानी है गिव पीस ए चांस, एक ये कहानी है बहुत हार्ट टचिंग है, आप देखिएगा बड़े वो लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने नई नई कार खरीदी और नई कार को बस बैठा हुआ था देख रहा था, बच्चा आया, बच्चा कुछ उस पर ठुक ठुक करने लगा, थोड़ा उसके अंदर जरा वो हो गया, व्यक्ति ने देखा नई कार, बड़ा क्रोध आया, उसने बच्चे को इतना तेजी से मारा उसके हाथ के ऊपर भी, तो वो हाथ एकदम बहुत डैमेज हो गए। जब क्रोध उतरा वो लेके हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने देखा, बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं, उसकी उंगलियां काटनी पड़ी बच्चे की। तो इसमें लास्ट में वो कहानी है, तो इसमें कहता है जब बच्चे को होश आया, बच्चे ने कहा डैडी आई एम सॉरी अबाउट योर कार, देन ही आस्ट, तब उसने पूछा बट व्हेन आर माय फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक, मेरी उंगलियां कब फिर से निकलेंगी। बस ये सुना पिता ने, द फादर वेंट होम एंड कमिटेड सुसाइड, ऐसे पश्चाताप इतना हुआ उसने आत्महत्या। तो क्रोध में भले इस स्टेज तक न पहुंचे लेकिन ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं, हमेशा ही आती हैं जब व्यक्ति को पश्चाताप होता है। इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट ये मंत्र सदा याद रखो, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा है आई हैव डिसाइडेड टू स्टिक विद लव, हेट इज टू ग्रेट ए बर्डन टू बियर। घृणा, आप किसी से घृणा कर रहे हैं, घृणा बताएंगे तो कभी, लेकिन अंदर ही अंदर घृणा एसिड जैसे होता है ना, एसिड जिस बर्तन में रखा जाता है पहले उसे काटता रहता है, जब जहां फेंको बाद में जिसे काटे उसे तो काटे, पहले तो जिस जगह, तो घृणा ईर्ष्या द्वेष क्रोध आवेश निगेटिविटी पहले अपने को खाती है। इस कारण से इस इन सबको वो, तो ये गणेश जी का अभी पर्व चल रहा है और इसी नोट के साथ हम समाप्त करते हैं। कौन सा गणपति बापा, मौर्या बोलते हैं ना, लेकिन ये मौर्या ऐसे ही नहीं, गौर से देखिएगा गणपति का एक एक चीज, गणपति का बड़ा सिर जो है वो बड़े विचारों का प्रतीक है। तो आप अभी जाए हमेशा जीवन में बड़े विचारों को स्थान दें, छोटे विचार ने उसका निंदा पर चिंतन दूसरे का ग्लानी करना वो नहीं है, गणेश जी का बड़ा सिर बड़े विचारों का प्रतीक। और सूंड बड़ी है, कितनी सूंड में स्ट्रेंथ होती है, पेड़ को भी पकड़ के तोड़ के डाल दे, तो ऐसे सूंड नाक, नाक श्वास का प्रतीक होती है, नाक से हम लोग श्वास लेते हैं, जीवंत व्यक्ति ही श्वास लेता है, ऐसे ही नाक इतनी फ्लेक्सिबल है सूंड, जिधर चाहे गणेश जी का उधर उधर करके जो भी चीज को हाथ में लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है, कि जो नाक है ना वो बड़े बड़े जीवन में समस्याएं भी आएंगी जीवन, लेकिन वो समस्याओं को हम जड़ से उखाड़ करके फेंकने का प्रयास करें। समस्याएं आएंगी लेकिन उनसे हम घबराए नहीं। और छोटी आंख वो योग का प्रतीक है, घर में भी आरती करो आंख बंद होने लगती है, धर्म पूजा करो भजन गाओ, ऐसे ही योग का प्रतीक छोटी आंख लेकिन खुली हुई। तो यहां पर भी यही अभ्यास कराया जाता है, आप आंख खोल के रहो और तब योग करेंगे तो क्योंकि जिन पूरे दिन भर तो आंख बंद रख नहीं सकते, खोल के ही काम करना है, और हमारा तो कर्म योग है, कार भी चलाए, स्कूटर चलाए, घर में रोटी पकाए, ईश्वरीय स्मृति में। तो छोटी आंख कर्म योग का प्रतीक, और साथ में क्या है, बड़े कान, बड़े कान इस बात का प्रतीक है, सुनो, कीप योर ईयर्स ऑलवेज ओपन। अक्सर करके जब क्रोध आता है ना, तो हम अपनी बात कहने की ज्यादा कोशिश करते हैं दूसरे की बात को सुनते कम है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात को सुन लें, आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती, ठीक है पहले तुम बोल लो। तो इस कारण से वो बड़े कान खुले कान इसी बात का प्रतीक है कि हम ओपन रखें, सुने। और बड़ा पेट किस बात का प्रतीक है, समाने का प्रतीक। इसीलिए ये समाने का प्रतीक, घर की कोई बात होती है हम समाते हैं ना, मानो घर में कोई ऐसी बात हो गई, हम नहीं चाहते मोहल्ले में फैले, कोई बच्ची के साथ बच्चे के साथ कोई ऐसी बात, उसे हम समा के रखते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरों की भी बात को समा करके रखेंगे ना, तो ये समाने की शक्ति जितनी अधिक होती है, उतना उतना मन के अंदर की निगेटिविटी खत्म हो जाती है। नहीं तो हमेशा होती है, कोई बात हुई बस इसको सुनाओ इसको सुनाओ इसको, दूसरे की बात को फैलाने की आदत, और वो जो है पर चिंता पर निंदा, और ये मनुष्य की निगेटिविटी को और बढ़ाता जाता है। और साथ में आप देखो गणेश जी का ना, ये जो पैर है, एक पोस्चर खास होता है, एक ये जो दाया पैर है ना, बस जमीन को जस्ट टच करता हुआ है, बायां पैर ऊपर, ये किस बात का प्रतीक है। शरीर के अंदर ब्रेन होता है ना, एक होता है लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन। तो लेफ्ट का जो ब्रेन होता है वो लॉजिक होता है, वो विश्लेषणात्मक होता है, और लेफ्ट ब्रेन शरीर के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर लेफ्ट ब्रेन में कोई क्लॉटिंग हुई तो पैरालिसिस वगैरह राइट पार्ट में होती है, और जो राइट पार्ट होता है वो इमोशनल भावात्मक वो होता है, वहां पर कोई क्लॉटिंग वगैरह हुई उससे शरीर का लेफ्ट पार्ट वो पैरालाइज होता है। तो राइट लेग जस्ट जमीन को छू रही है, तो गणेश जी ये कहते हैं कोई जमीन पर धरती पर रहो, घर गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, लेकिन उससे रह न्यारे रहो, संसार में रहो लेकिन हमारे में संसार ना रहे। उसने ये किया, उसने वो करा, फलाना, ये सारी बातें निगेटिविटी की सुने और फैलाते रहें, उसकी बजाय रहें हम संसार में, घर गृहस्थी में रहना है लेकिन इन चीजों से दूर। तो इसीलिए राइट लेग बस ऐसा जैसे उठने वाले हैं अभी, और लेकिन जमीन से टच की हुई, और लेफ्ट पार्ट लेफ्ट लेग वो भावनात्मक ब्रेन का प्रतीक है। गणेश जी के चार हाथ है, चार हाथ में क्या है, एक लड्डू, एक हाथ में लड्डू मोदक प्रिय होता है ना, वही मीठी वाणी का प्रतीक है, मीठे व्यवहार का प्रतीक है। जो अच्छे व्यवहार मीठा व्यक्ति होता है वो सबको प्रिय होता है। तो वो मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, मीठा चिंतन करना, अच्छा पॉजिटिव, ये वो लड्डू का प्रतीक है। दूसरा एक हाथ वरद हस्त, वो वरद हस्त किस बात का प्रतीक है, सबके प्रति हमारी शुभ भावना और शुभकामना। जहां पर भी बायस्ड फीलिंग आ गई, निगेटिविटी आ गई किसी के लिए, तो वो निगेटिविटी जो है ना, वो हमारी शुभ भावना को खंडित कर देती है, और वो ही अशुभ वातावरण के अंदर फैलता जाता है। और वैसा यहां पर आप आए, यहां आपको क्यों शांति का अच्छा महसूसता हो रही है, क्योंकि यहां रहने वाले जो लोग हैं ना, वो सभी शांति प्रिय हैं, शांति का अभ्यास, योग का अभ्यास, जीवन में खुशी उनके, सब पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वातावरण के अंदर ऐसे प्रकंपन है, वाइब्रेशन है, उसमें आप आए हैं, आपको भी वही महसूसता हो रही है। तो हम चाहते हैं ऐसे प्रकंपन वाइब्रेशंस आप लेके जाएं, अपने परिवार में भी ऐसे वाइब्रेशन बनाएं तो परिवार के सभी सदस्य वो भी पॉजिटिव हो जाए, मीठे रहे व्यवहार में, मधुर सोचने में और बोलने में, और साथ ही साथ ये उसका प्रतीक। तीसरा, एक हाथ में क्या होता है, कुल्हाड़ी जैसी होती है, वो है अपने काटने का प्रतीक। पुरानी चीजें जो है ना, जो पुराने संस्कार है, वो पुराने संस्कारों को हमें काटना है, खत्म करना है, वो पुराने संस्कार उसका प्रतीक है। वो योग के द्वारा मनुष्य के विकर्म भस्म होते हैं, और इस कारण से बस मनुष्य को कब होगा, जब काट सकता है, कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या। तो इसीलिए जीवन में एक बात और आनी चाहिए, क्या, मनुष्य को झुकना सीखना चाहिए। कहां मुझे झुकना है, हर जगह अगर हम अपनी चलाते रहेंगे ना, कटुता आएगी, तनाव आएगा। जहां व्यक्ति झुकना सीख जाता है ना, वहां प्रॉब्लम आधी से ज्यादा खुद। ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, झुक वो ही सकता है ना जिसके अंदर नम्रता होगी, शक्ति होगी, वो झुक सकता है। झुकता वही है, पुरानी बात है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना, वो अकड़ा रहता है। अगर मैं भी स्टिफ हूं, अकड़ नहीं, मैं कह रहा हूं वो सही है, यही बात को अगर हम लेके बैठ जाएं, अकड़े रहना ये तो मुर्दे की पहचान है। जो झुक सकता है, फ्लेक्सिबल है, वही तो जीवन की निशानी है। और वो तब कर सकते हैं हम, जब हम अपने पुराने अनेकानेक विकर्मों को भस्म करते जाएंगे। और एक कमल फूल, चौथे हाथ में कमल होता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से न्यारा। तो रहना हमें इसी दुनिया में है, लेकिन दुनिया से न्यारा रहना। और गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा मूषक। कभी सोचा, इतने अच्छे हट्टे कट्टे गणेश जी, हाथी वाला शरीर, चूहे के ऊपर कैसे, उसकी सवारी का भाव क्या है। चूहे का भाव यह है कि चूहा जो है ना, हर चीज को कुतर देता है, उसके लिए वैल्यू का पता नहीं रहता। चूहा हमारी इच्छाओं का प्रतीक है, इच्छाएं जो है ना, वो मनुष्य को खोखला बना देती है। बहुत ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, हमें जो हमारे पास है वो देख के खुशी नहीं होती, लेकिन पड़ोसी के पास उससे ज्यादा आ गया, वो देख करके दुख होता है। तो इस कारण से इच्छाओं का जो ये आपको पीस भी बताया ना, डिजायर्स अनफुलफिल्ड, अतृप्त इच्छाएं बहुत। तो ये चूहे को बैठना, चूहे के ऊपर, यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। और साथ साथ चूहा हर चीज को कुतर देता है, तो उसे का भाव क्या है कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है, बस उसे अपनी इच्छाओं को दबा करके माने उस पर नियंत्रण रख के, तो हमें आगे बढ़ना है। तो ये सच्ची गणेश चतुर्थी है। अभी आजकल गणेश जी के दिन चल रहे हैं, उनका विसर्जन होगा, तो हम भी अपनी इन्हीं सब कमी कमजोरियों का विसर्जन करके सच्ची गणेश चतुर्थी मनाएं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।